ये आकाशवाणी है। अब आप अभिषेक कपिल से समाचार सुनिए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। नौवहन महानिदेशालय ने कहा है कि पाकिस्तान के झंडे वाले किसी भी जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब भारतीय झंडे वाले जहाज भी पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर नहीं जाएंगे। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू किए गए हैं। ये निर्णय भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और संबंधित बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक तथा जहाजरानी क्षेत्र के हित में लिया गया है। इससे पहले भारत ने एक और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में ये प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध में किसी भी प्रकार की छूट के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी डाक सेवाओं पर भी रोक लगा दी है। संचार मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने हवाई और सड़क दोनों मार्गों से डाक और पार्सल सेवा को निलंबित करने का फैसला किया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, इनमें सिंधु जल संधि पर रोक लगाना, अटारी सीमा को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों को निकालना और राजनयिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत और अंगोला ने कृषि, पारंपरिक चिकित्सा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मनुएल गोंजाल्वेस लोरेंसो के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद समझौते किए गए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। वी थैंक अंगोला फॉर देयर सपोर्ट इन अवर फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
श्री मोदी ने कहा कि भारत को अंगोला के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण में सहयोग करने में खुशी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की प्रगति का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी निर्यात, जैविक उत्पादन और गुणवत्ता वाले बीजों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संगठन के रूप में सेवा करने के उद्देश्य से 2023 में 3 राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये पहल संबंधित मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सहयोग से संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण के तहत संचालित की जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज देश भर में 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश में 13 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 आयोजित करेगी। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि सुरक्षित और संरक्षित परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। परीक्षा के लिए 22,70,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने संघीय चुनाव में बड़े बहुमत से जीत हासिल की है। 150 सीटों वाली प्रतिनिधि सभा में लेबर पार्टी ने 84 और लिबरल नेशनल पार्टी ने 33 सीटें जीत ली हैं। मतगणना अभी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंथनी अल्बानीज को ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रन से हरा दिया है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु के 214 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई निर्धारित 20 ओवर में 211 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ बेंगलुरु की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर आ गई है। चेन्नई की टीम लगातार 4th मैच हारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।